सिद्धेभ्य नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सर्वसाहूलं सर्वव्यापीक चिद्रूपाय स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। एष सुरासुर मनुसिंध वंदितं दोदघायी कममलं वडमामि वढ्यमाणं तित्थं धम्मस्य कत्तारं शेषे पुणतिथि हरि ससव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे शमणे अणान दंशन चरित तौ वीर्यायारे ते समवे समगम समगम पत्येगमेव पत्येगम बंधामि अभट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चारहन्ताणं सिद्धाणं तैणमौगणहराणं अज्जावैवग्गाणं साहूणं चीवसाविसिं तेसिं विशुद्धदंशनाणपाणासमं समासिज उपसंयामि समं जत्वणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार जी परमागम दिवध्वनि का सार उसके आधार से गे तत्प्रज्ञापन की 191 गाथा उसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। कल मैंने आपका प्रारंभिक इसका स्वरूप बता ही दिया था, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन गे तत्व प्रज्ञापन और चरणाजिक सूचक चूल का। संजीव जी भी वही ले रहे हैं, अच्छी बात है गाथा अस्सी। और इसमें बात ही बताना है मुख्य रूप से कि ध्यान कौन करता है, ध्यान होता कैसे है। तो जब मैं कोटा जाता था कवि बाबूजी के पास, कई बार वो समय सार संपादन के हेतु बहुत जाना पड़ा, तो वो जब भी बैठते थे यहाँ से शुरू करते थे 191 से 200 गाथा तक। इसमें बोले जो सम्यक दर्शन का अधिकार कहाँ है से जैसनाचार्य देव ने, वो यहाँ से इसको पकड़ना है। बाकी तो वो उसका पूरा विस्तार है। सामान्य के अधिकार 93 गाथा से लेकर के 126 तक, 127 से 144 तक विशेष गए अधिकार, एक एक द्रव्य गुण पर्याय की पूरी वस्तु स्थिति दर्शन करा दिया आचार्य। यानी आप अपने स्वभाव को द्रव्य गुण पर्याय से उत्पाद व ध्रुव धर्म से जो त्रिकाल स्वरूप है और उसको समझ लोगे, वस्तु की संरचना पूर्ण रूप से प्रमाण की वस्तु कैसी है। जैसे अभी चला था अपना प्रकाश भाई जी के द्वारा कि सत्ता एक, प्रमाण की सत्ता एक ही पूरी वस्तु, और उसमें दो रूपता पड़ी हुई है, एक सदाकाल कभी नो चेंज ध्रुव पार्ट अपरिणामी तत्व, और दूसरा है एवरी मोमेंट चेंज हर समय पलटने वाला वो उत्पाद व्यय। इसका मैंने शुरू से ही यहाँ बहुत गहरा स्वाध्याय पहले चला था और अभी भी चलता है। रजनी भाजी तो इसके मास्टर हैं, बहुत प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं, हर सैटरडे लेता हूँ, वो चलता है उसमें और बहुत सारे सुनते हैं। तो उसमें ये आठवीं गाथा तत्व जो अपने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की उससे मैंने निकाला था, परणमदि जैन दब्बम तत्काल तमयम परणत्तम, मैं आऊँगा इसी गाथा पे। उसमें आचार्य ये कह रहे हैं अभेदोपचार और अभेद वृत्ति की बात कही है। रजनी भाई जी आपने पूछा भी था मेरे से प्रमाण वाक्य और नए वाक्य क्या है, उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। हम आपने पूरा ध्रुव धाम की धूम मचाई, गुरुदेव श्री का भी प्रधान वाक्य सुनाई है, बोलोगे तेरा धा वाला विजय भाई ध्रुव धाम ना धे ना धक्ति धुनी धगस्थी धीरस्थी धकावनार धर्मनो धारक धर्मी धन्य छे। इसमें क्या आ गया, इसमें विषय साधन फल सब आ गया भाई। विषय जो अपना है ध्रुव धाम चैतन्य धाम शाश्वत धाम, और उसमें धीरस्थी धगस्थी धकावनार माने ये प्रज्ञा छेने की बात जो भी ले रहे थे अपने शैलेश भाई, यही असली साधन। जैन न्याय कहता है जीव की भूल अनादि काल से या तो विषय में रही, ध्येय में, या फिर साधन में रही, तो अभी चार दिन पिछले जो अपने गए पूरी ध्येय की स्पष्टता के लिए लगाए पूरी ताकत चेतन भाई ने और प्रकाश भाई ने कि जो परद्रव प्रभाव की बात तो छोड़ो, विकारी पर्याय की बात छोड़ो, अरे पर्याय मात्र जिसको संयोग कहा गया, पंचाशी काय की गाथा है कौन सी 18, जिसको पर्याय मात्र को संयोग कहा, संयोग उसे कहते जिसका वियोग हो जाए, तो कौन सी पर्याय जो अनादि अनंत रहती है उसको आप कह सकते हो ध्रुव प्रवाह रूपी कारण शुद्ध पर्याय कह सकते हो, ख्याल में ना छे 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 सदैव कल। तो विषय का अगर निर्णय हुआ अपने मति श्रुत ज्ञान में तो अब कौन सी भूल रहती है, तो जैन न्याय कहता है तुम्हारी हमारी अनादि काल से मोटी भूल साधन में रही है, हमने साधन बनाया व्यवहार को, दर्शन पूजन भक्ति को, बाह्य सात स्वाध्याय आदि को, जिसके लिए श्रीमद जी ने लिखा यम नियम संयम आपकी आदि, लेकिन उससे काम नहीं बना, ये होते तो हैं मोक्ष मार्ग में नियम से, यहाँ तक लिखा मिलेगा, बिना व्यवहार रत्नात्रय के निश्चय रत्नात्रय नहीं मिलता, ये भी लिखा मिलेगा आपको, मैंने कोई सम्यक दृष्टि जैनेश्वरी जिन दीक्षा लेता है चौथे वाला हो पांचवें वाला डायरेक्ट सातवें में तभी जा सकता है जो जैनेश्वरी जिन दीक्षा ले और स्वरूप में एकाग्र हो गए। तो ये जो ज्ञानोपयोग है तीन भाव है ना शुरू से चल रहा अपने, कौन सा परम पारायणक भाव छह उसमें ज्ञान पर्याय और मोह राग द्वेष सौदिक भाव। अब ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता, राग द्वेष मेरे स्वरूप के अस्तित्व के बाहर की चीज है, अनात्मा है, पैदा तो हुए यहीं, जैसे बाल नाखून शरीर में ही पैदा होते हैं लेकिन उनको काट दो तो कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि उसके सुधारने संवारने का भी चक्कर छूट जाता है। ऐसे ही राग द्वेष कसाय परिणाम उत्पन्न तो क्षणिक पर्याय में हो रहे लेकिन वे वास्तव में दुख आकुलता में निमित्त बन रहे हैं। जब तक हमको राग प्रिय लगता है समझ लो तुम कितना ही स्वाध्याय सामायिक जब तक कर लो तुम्हें वीतरागता प्रिय नहीं लगी, तीन वन में सार वीतराग विज्ञान था। तो ये अपनी कौन सी भूल आज तक निकल गई, ध्येय की निकल गई, कब निकालेंगे? स्वयं को स्वयं से प्रश्न पूछना पड़ेगा, क्या मुझे ऐसा जब प्रमाण से जो अपन ने पकड़ा द्रव गुण पर्याय पूरी वस्तु और मेरे स्वभाव में परिपूर्ण सगबड़ता है, गुजराती में सगबड़ता बोलते हैं ना, कोई पढ़ने अगबड़ता छेज नहीं, फुल फ्लैश फैसिलिटीज वाला मेरा मकान है चैतन्य सदन, और शरीर जो रोगों का घर है इसके इलाज में अनंत जिंदगियां बिगाड़ दी, यह है व्याधि का मंदिर और मैं भगवान आत्मा हूं ज्ञान का मंदिर। शरीर में कितनी व्याधियां होती हैं बताए, गणना बताई थी, हाँ ये याद रहेगा, 5,68,00,000 कितने हजार 96,584 इतने धनी हैं और कितने मिटा रहे हैं, जो वास्तव में मैं नहीं हूं जब तक ये बुद्धि नहीं निकलेगी तब तक वो धर्म का अंकुरण नहीं होता। ये गाथा भी पढ़ेंगे अपन, इसमें से बताऊंगा मैं, तो वर्तमान में मैं इसको बार बार रिपीट करता हूं, एक पारिणामिक भाव और वर्तमान में मति श्रुत ज्ञान की पर्याय वो छह लिखता हूं मैं, नए लोग भी पूछते थे, 5 इंद्रिय और 6 मन हिंदी वाला और मोहराग देश उसको 3 लिखो, इज इक्वल टू मिथ्या, ये क्या हो गया, ये ज्ञान टार्च औदिक भाव से जुड़ रही है, राग से दोस्ती की है जो भी आप ले रहे हो शैलेश भाई, और उसको ही घटबड़ करता है लेकिन उससे कभी प्रयोग बदल करके नहीं देखता कि इससे आज तक मुझे कोई सुख शांति नहीं मिली। कोई पण प्रकार का राग क्यों ना हो, राग का पहले आत्मभूत लक्षण पकड़ो तो 7 तत्वार्थों का श्रद्धा ने यथार्थ उदित होगा, एक एक तत्व अपने अपने में अपना स्वरूप लिए हुए है, एक तत्व का अंश दूसरे तत्व में नहीं जा मिलता। आश्रव का क्या है, राग का क्या लक्षण है? करो और मरो। राग किसी को भी उत्पन्न होगा वो चैन से बैठने नहीं देगा, हमेशा पर से जोड़ेगा। और वो 181 गाथा कलपल ले चुके हैं। ये जीव के दो प्रकार के परिणाम, स्वद्रव प्रवृत्त परिणाम और परद्रव प्रवृत्त परिणाम। और जो परद्रव प्रवृत्त परिणाम है वो या तो पुण्य रूप होंगे या पाप रूप होंगे। लेकिन स्वद्रव प्रवृत्त परिणाम कैसे हो कि जब ज्ञानी की देशना ये जीव सुनता है तो सुनता कौन है, एक भी नहीं सुनता है पारिणामिक भाव, और मोहराग देव स्वाधिक भाव भी नहीं सुनते हैं। सुनने का काम, विचार करने का काम किसका है, ज्ञान पर्याय का है, मति श्रुत का है। जो शब्द बोला मैं भगवान आत्मा हूं, ये शब्द ज्ञान हुआ, ये मति ज्ञान है। उससे उसका वाच्य ख्याल में आ जाए वो कैसा है, मैं ज्ञान और आनंद स्वभाव वाला। आत्मा को सचमुच ज्ञानी नहीं होना, सुखी नहीं होना, वो ज्ञान और आनंद का बना हुआ घनपिंड है। अगर ये नक्की हो गया वर्तमान ज्ञान पर्याय में तो सोचेगा आनंद क्यों नहीं लूटूं मैं, क्यों नहीं लूटूं मैं। लूटना चाहिए ना, जब मेरे अंदर ही ये सब सामर्थ्य विद्यमान है। तो वो सुने जब ना, कहने पढ़ना दुर्लभ, गुरुदेव बोलते हैं बात, सुनता है, विचार करता है, कर विचार तो पाम। अरे मैं सचमुच ऐसा हूं, अतीन्द्रिय महापदार्थ अभी आएगी 192 गाथा, उसमें से लेंगे सब। ध्रुवत के कारण शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य। क्यों? तो एक शब्द के द्वारा, एक लक्षण के द्वारा जो पकड़ाते हैं ज्ञान वो आत्मा। इसको जैन न्याय में कहा नए भाषा में अभेद वृत्ति, माने एक अंश के द्वारा पूरे अंश को पकड़ लेना, एक ऐसी विशेषता जो अन्य परद्रव्य प्रभावों से उसको डिफ्रेंशिएट कर देती, डिस्टिंग्विश कर देती, भिन्न खड़ा कर देती। तो ज्ञान के बाहर आत्मा नहीं, आत्मा के बाहर ज्ञान नहीं, क्योंकि द्रवगुण पर्याय में एक अभेद सत्ता है। ये प्रमाण की ओर से बात चल रही है। लक्षण द्रव्य का, गुण का, पर्याय का जुदा जुदा है। एक एक शब्द का, वाचक का वाच्य जुदा जुदा मिलेगा। तीनों अभेद होने पर भी 106 आदि गाथा में क्या है आचार्य, पहले इसको क्रम से पढ़े तो बिल्कुल ऐसा लगे इतना सरल हो जाए। द्रव्य गुण नहीं है, गुण द्रव्य नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय नहीं है, और पर्याय द्रव्य गुण नहीं है। और तीनों, कल मैंने एक बात कही थी कि तीनों इंडिपेंडेंट भी हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हैं। एक नहीं होगा तो दूसरा ही नहीं होगा। ऐसे ऐसे जवाब दिए आचार्य ने 101 आदि गाथा में। गुरुदेव का जो 99 गाथा से लेके प्रवचन है ना पदार्थ विज्ञान, पहले वो पदार्थ विज्ञान से वस्तु की संरचना पूरी तरह अपने ज्ञान में कली लो, बोलते ना समझ लो, आ जाएगा ना शब्द कोई गुरुदेव। अगर वो बात पूरी हृदयंगम हो गई तो सचमुच में उपयोग अपने घर में ही प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश, ग्रह का पता चल जाने पर ही होता है ना, खरीद लेने पर। ये उपयोग को, उपयोगवान अपना आत्मा ग्रह पता क्यों नहीं, लापता क्यों? क्योंकि बहिर्मुख दृष्टि अनादिकाल से चली। तो आचार्य से कहा कि आत्मभूत स्वलक्षण, तो देखो आचार्य कहते हैं 6 द्रव्यों में अग्र कौन है, जीव। तत्व में जीव, पदार्थ में जीव पहले नंबर, और वो जीव स्वयं ज्ञान और आनंद का पिंड होकर के भी अपनी सत्ता से बेखबर है, अपने स्वरूप से बेखबर है। तो लक्षण से लक्ष्य को पकड़ो, ज्ञान लक्षण है। तो एक अंश है ये, तो अनंत गुण का पिंड है वो, उससे पूरा ज्ञानवान आनंदवान पदार्थ अपने ज्ञान में ज्ञेय प्रमेय बनता है। आचार्य ने लिखा है पहले आगम प्रमाण से, पीछे अनुमान प्रमाण से जानकर, फिर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष करो, तो वो कीमत है। नहीं तो शास्त्र ज्ञान से जान लिया, अनुमान से भी जान लिया मैं ऐसा है, लेकिन अंतर्मुख अवलोकन नहीं किया, वो कब करेंगे, कैसे करेंगे? उसके लिए बहुत रचनाएं हुई शास्त्रों के अचल, एक तत्वानुशासन है पूरा ध्यान का ग्रंथ, और इसमें यहां से वो इशारा किया आचार्य, तो उसको कहते हैं प्रमाणवाद, गुण के द्वारा या पर्याय के द्वारा पूरी वस्तु को कैच करना। जैसे ये जीव मिथ्या दृष्टि, ये जीव सम्यक दृष्टि, अरे पूरे जीव को मिथ्या दृष्टि करें, पूरे जीव को सम्यक दृष्टि करें, पूरे जीव को रागी क्रोधी करें, पूरे जीव को वीतरागी करें, अल्पज्ञ सर्वज्ञ करें, ये क्या बात है। कहते उसकी एक दशा से पूरे दशावान पदार्थ को पकड़ते, तो गुण के द्वारा गुणी को पकड़ें तो वो कहलाता अवेद वृत्ति। ये राजवार्तिक में अकलानदेव स्वामी ने चौथे अध्याय में लिखा है लास्ट में। और अभेदोपचार क्या है, पर्याय से पूरे द्रव्य को पर्याय जैसा देखना, ये रागी ये वीतरागी, ये मिथ्या दृष्टि ये सम्यक दृष्टि, एक इंद्री दो इंद्री आदि जो भी, इनसे उसको देखा जाता है, कहा जाएगा ये सब व्यवहार जन्य भी। और अब नए वाक्य क्या है, ये तो अंश से अंशी को पकड़ा, पर्याय से पर्यायवान को और गुण से गुणी को गुणवान। अब नए वाक्य क्या होता है कि अंशी में से अंश को मुक्त करना, इसमें क्या है, ये आम कैसा है खट्टा है, आम कैसा है मीठा है, आपको उसकी गुण विशेषता जानने का भाव हुआ, तो अंशी में से अंश को मुक्त करना, गुण को मुक्त करना या पर्याय को मुक्त करना, वो कहलाता नए वाक्य। एक वाक्य के अंदर ये डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा टच किया है नए चक्र में, बाकी ये और जगह मिलता है। तो जो अपन कहते हैं आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ये पकड़ने जानने वाला तो ज्ञानी है, तो ये जीव को इतना सरलतम कार्य सम्यक दर्शन, एक क्षण का काम है भाई साहब, इतने इतने बड़े लेक्चर सब अनंत काल तक सुनते रहो, दिव्य ध्वनि भी सुनी, क्यों काम नहीं हुआ, अंदर का शेर नहीं जागा, पुरुषार्थ नहीं जागा, सब सारी चीज वस्तुस्थिति मिल चुकी है तुझे, दाव मत चूको अभे, ये लिखते ना दौलत राम जी। जैसे अपन देखें अमृत चंद्राचार्य देव की जितनी टीकाएं हैं तीनों ग्रंथों की, वीर रस से लिखी है, कमर कस ली है, किसको बाहर करने के लिए, मोह को, कौन सा मोह, अरे उनको चारित्र मोह भी मोह ही है ना, सब गेट आउट करना है, और छायक तो हुआ नहीं है ये भी, तो इसलिए ये बात करके आचार्य देव कहते हैं कि जब वो छह माने पांच इंद्रियों और छठा मन के द्वारा जो तेरी ज्ञान की ताकत है पूरी, ज्ञान छह चार नहीं होती, ज्ञान गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती, पूरी टार्च परोन्मुख से सोन्मुख कर, मैं ज्ञान आता किसमें से, तो अब समय कम है, तुम तो शॉर्ट में यहाँ पर ये बात बताते हैं, मेन मुद्दे की बात, चार पांच बिंदु हम रटाते हैं सर, क्यों मेरे को और ज्यादा आता नहीं है। आपसे पूछा जाए अरविंद जी इस समय एग्जैक्ट टाइम बताओ कितना हुआ है जल्दी, 8:25। ये जो जानना हुआ आपका, ये घड़ी से हुआ कि नहीं हुआ, तो घड़ी तरफ क्यों देखा, ये ज्ञान पर्याय कहां से उत्पन्न हुई है, उल्लास भाई आप बोलो, उसमें से ज्ञान आता है, ये हमारी कमजोरी है। अच्छा अगर घड़ी से ज्ञान होता है तो एक अनपढ़ को खड़ा करो, यहां गांव का कोई व्यक्ति अनपढ़ हो, देखना भैया कितना बजा है, बताएगा गंगवाल जी, बताएगा कि नहीं, क्यों घड़ी से ज्ञान होता है कि नहीं, अरे जिसको यहां छह उत्सम होगा, स्वावरण छह उत्सम लक्षण योग्यता विषय प्रतिनियत अर्थम व्यवस्था, ज्ञान के उघाड़ के अनुसार ये जानने में आते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, इंद्रियों से ज्ञान होता कि नहीं, ये पहले सब चीजें गेट आउट करके पकड़ के फिर बैठो तब इसका मजा आएगा, इंद्रियों से ज्ञान होता कि नहीं। हमारे कई साथी लंदन पंचकलाणक में गए थे और उन्होंने वो कोहिनूर हीरा देखा, पूछा मैंने, हमारे वो देवेंद्र भड़कोले वगैरह देखा तो वैसे बड़ी तारीफ की। अब मैंने उसमें से एक एग्जाम्पल बनाया, एक व्यक्ति क्यू में लगा कहता है व्हाट ए प्रीशियस डायमंड इट इज, कितना भेष कीमती हीरा है, तो उसके पीछे खड़ा व्यक्ति कहता है यू आर ए फूल, तुम मूर्ख, वो कहता है मैं कैसे मूर्ख हूं, इज देयर समथिंग मोर प्रीशियस देन दिस डायमंड? यस जेंटलमैन, इट इज योर आईज विदाउट विच यू कुड नॉट सी इट। महोदय वो आपकी आंखें, बोलो आंख कीमती है कि हीरा कीमती है? अच्छा किसी को कहा जाए एक आंख दे दो और हीरा ले लो, देने तैयार होगा कोई? तो कौन कीमती दिखा उसको? आंख दिखी। और उसके पीछे मैं खड़ा था, बोले आप तो आए नहीं थे। मैंने कहा मैं खड़ा था, तुम सुनो अभी अभी इस म्यूजियम के बाहर वन पर्सन है डाइट और उसकी आंखें बिल्कुल खुली हैं, 6x6 परफेक्ट हैं। कहेंगे डॉक्टर साहब पूरा उसमें कोई भी मायोपिया कैटरेक्ट आदि कोई बीमारी नहीं है। और मरने से पहले उसने लिख दिया डोनेट कर दिया, आई डोनेशन चलता ना आजकल, उस मर्दा को लाओ आंख खुली है खड़ा करो और बोलो देखो कोई नहीं रो रहा, देखेगा कि नहीं? क्यों? अरे आंख से दिखाई देता था ना, तो आंख तो नहीं देख सके। और उसको निकाल के डॉक्टर ने किसी अंधे को लगा दिया और उसको दिखने लगा। कौन कीमती हुआ प्रवीण जी, कौन कीमती हुआ? ये ज्ञान ज्ञान को जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी? पविया जी ने लिखा ना 170 तीर्थंकर विधान में तीसरी पूजा, जो ज्ञान ज्ञान को जाने नहीं कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी। ज्ञान में समर्पित जो गया बली वह घोषणा करे ज्ञान सामान्य की। ज्ञान 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 स्वभाव याद। ज्ञानी तीन प्रकार के कहे गए, केवल ज्ञानी, ज्ञानी से सभी अज्ञानी, पूर्णता की अपेक्षा, आत्मज्ञता की अपेक्षा, चौथे से सब ऊपर के सम्यक दृष्टि। ज्ञानी से सभी अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, आंख वाले सब हैं, ज्ञान वाले सब हैं मतलब। और तीसरा ज्ञानी कौन? अरे छह द्रव्य विश्व जो ज्ञान का बना है पिंड, ज्ञान मात्र जिसमें है, जीव मात्र ज्ञानी और बाकी सब जड़ द्रव्य अज्ञानी। तो मैं कौन द्रव्य हूं ये नक्की करने में कहां तकलीफ है? तत्व में, अब इसके स्वरूप में आओ। अभी लक्षण की बात चलती थी, अब इसको गाथा को पढ़ते हैं और इसमें से सेट करते हैं। देखो कितना है, कितने बजे, मुझे ख्याल नहीं कितने बजे तक है, 9 बजे तक टाइम। देखो गाथा पढ़ते हैं अपन सब, इसमें से उसको सेट करता हूँ। इतनी बात तो ख्याल में आ गई, ज्ञान गेयों का नहीं, गेयों से नहीं, क्योंकि गेयों में नहीं, स्वीकार अंतर से। दूसरा ज्ञान इंद्रियों का नहीं, इंद्रियों से नहीं, क्योंकि इंद्रियों में नहीं, ये लॉजिक है न्याय का। क्या देख लें ज्ञान किसका, इंद्रियों से होता है कि नहीं होता? ज्ञान ना इंद्रियों का था ना है और ना गेयों का था ना है, किसका है? ज्ञान सदैव सदैव अतेंद्रिय, अतेंद्रिय माने इंद्रियों का नहीं, आत्मा का है, आत्मा से हो रहा है। दूसरा ये ज्ञान प्रकाश से नहीं होता, अंधेरे में कुछ दिखाई देता है? विजय भाई का बढ़िया, दिखाई देता है कुछ? अंधेरा दिखाई देता है, उजाले में दिखता है अंधेरा क्या, अंधेरे में दिखता है? अरे अंधेरे को अंधेरे में देखा था कि उजाले में देखा था? भाई साहब बिना ज्ञान उजाले के ना अंधेरा दिखेगा ना ये उजाला दिखेगा। ज्ञान का बल्ब कभी फ्यूज नहीं हुआ निगोद से लेकर, इसमें कभी उपसमाधि भाव नहीं होता, सदैव इसका बस इतना है वोल्टेज डाउन है। जैसे 100 वाट का बल्ब, वो हमेशा ही मैं बोलता हूँ, तो निगोदिया जीव को इतना अल्प है कि लाल तार दिखता है, थोड़ा वोल्टेज बढ़ा, एक इंद्री पर्याप्त तक, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री संगी, निर्णय करने की ताकत आ गई। हम लौकिक कार्यों में इतने विचक्षण हैं, क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन हम अपने ज्ञान की बर्बादी कर रहे हैं। ये ज्ञान जिसका है, ये प्रकाश का भी नहीं, शुभ राग का भी नहीं, कषाय का भी नहीं, ये वेद ज्ञान असली वेद ज्ञान है, राग और ज्ञान का वेद ज्ञान करना, और तब जाकर के ये मर्म इसका अंदर में बैठेगा। 126वां कलश है समय सार में। चैद्रूप्यम जड़ रूपताम च ददतो कृत्वा विभागम दियो अंतर दारुण दारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च। चैद्रूप और जड़ रूप, राग जड़ रूप में चेतन रूप, ये प्रज्ञा छनी का ही प्रयोग है सब जगह। वहां भी कहा लक्षण से तुम लक्ष्य को पकड़ो, राग वो बंध का लक्षण और ज्ञान वो आत्मा का लक्षण प्रारंभ यहां से किया है। और एक मधुर बात, संवर अधिकार से आचार्य देव ने थोड़ा सा ट्रेंड बदला जो मेरे हिसाब से मैं देखता हूं। ज्ञान पर्याय उसको आधार का और त्रिकाली ध्रुव को आधी का। अब देख लेना उसमें जानन क्रिया आधार है और त्रिकाली भगवान आधी है, जबकि आगम की मूल व्याख्या क्या है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव आधार होता है और गुण पर्याय उसके आधे होते। अरे वो 20वां बोल अलिंगरण का, जिसने ये जाना यह मैं हूँ अनुभव रसपाक किया, उसने भगवान आत्मा जाना तो वो मोक्ष मार्ग का और पूरे आत्मा का आधार ज्ञानी है, लेकिन अनुभव में आए तब। तो ये जीव ने हमने आपने आगम प्रमाण से अनुमान प्रमाण से अनेक बार जाना, लेकिन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण से क्यों नहीं जाना, हमने उसकी दरकार नहीं समझी, हमने अपने उपयोग को राग से भिन्न सत्तावान पकड़ा नहीं। वो तो कर्म चेतना कर्म बल चेतना रूप है और ये त्रिकाल ज्ञान चेतना स्वरूप है। ये भेद ज्ञान होते ही ज्ञान चेतना का अंश प्रकट हो जाता है। देखो इस गाथा को पढ़ते हैं, तीन चीजें तो हो गई ना, ये ज्ञान गेयों का नहीं, इंद्रियों का नहीं, प्रकाश का नहीं, राग का नहीं, शुभ राग का नहीं, शुभोपयोग का नहीं। जानने में आएंगे सब ये गेय आदि, लेकिन उनसे नहीं होता, उनका नहीं होता, आखिर फिर किसका है? ज्ञान आत्मा का है, आत्मा से है, क्योंकि आत्मा आत्मा में ज्ञान है, माने आत्मा ज्ञानमय, आत्मा ज्ञान आत्मा का है ज्ञान, ज्ञानी का क्या अज्ञानी का? सबका जीव मात्र का वो ज्ञान स्वभाव है, उसके बिना जीव की सत्ता ही खड़ी नहीं होती। तो जो ज्ञान ज्ञान को जाने नहीं, तो इतनी सी भूल रह गई, एक जरा सा तुमको कौर कसने का, ये वास्तव में इसमें कितने प्रवचन लेक्चर सुनेंगे। क्या आपको ध्रुवधाम ना धेय ना धक्ति धुनी ये बात समझ में आ गई? ध्रुवधाम अनादि अनंत सत्ता अपनी, जन्म मरण से रहे, शरीर की व्याधियां तो मिट जाएंगे, असली रोग जीव का क्या है, जन्म मरण से छूट जाना सदा काल के लिए। उसका उपाय है कि मैं अजन्मा और अमर तत्व स्वयं सिद्ध कारण परमात्मा हूं, उसको पकड़ में ज्ञान में रखा, और कभी उससे विचलित ना हो तो ज्ञान नक्की करता है, निर्णय करता है, निर्णय इतना मजबूत हो कि कभी स्वप्न में भी संशय खड़ा नहीं हो, विपरीतता नहीं हो, अनध्यवसाय नहीं हो, तो श्रद्धा को करवट बदलना पड़ती हो, बदल जाती कि मैं मनुष्य नार की तिरंच नहीं, ये गुणस्थान मालगणा स्थान जीव समास ये सब व्यवहार से संयोग संयोगी भावों के कथन थे, मैं तो अरूपी चिद्रूपी एक भगवान आत्मा। और एक ही फार्मूला इसमें से बनाए, परिणामी द्रव्य इज इक्वल टू अपरिणामी तत्व प्लस परिणाम, मैं बहुत वर्षों से यहां बोलता था, अपरिणामी तत्व की उड़ता करेगा समय सार, अप्रवचन सार प्रमाण में से तुमको अपने उसको उपलब्ध कैसे किया जाए, तो उपयोग को उपयोग में जोड़ के कर सकता है, और वो बात समझ गए। तो ध्रुव उसका अगर अपरिणामी तत्व का निर्णय हो गया, किसने किया? ज्ञान नहीं। अब वो जो छह था जो तीन तरफ देखता था, उसने करवट बदली, एक तरफ देखा तो क्या हो गया? 1-3। अब अधिक भाव की क्या दशा होगी भैया उल्लास भाई? छह तो करवट बदल के एक की तरफ हो गया, स्वीकार किया यह मैं हूं, तो वहां पर क्या हो गया? अधिक भाव में कुछ होगा कि नहीं होगा? कुछ होगा कि नहीं होगा? अरे गजब कर रहे भैया, उसमें क्या क्या था? तीन में तेजानी जी, मिथ्यात राग द्वेष, उसमें सब आगे खसा। तो जैसे उपयोग ने उपयोगवान आत्मा को देखा, राग को भिन्न देखा, उपयोग में उपयोग नहीं, उपयोग करो दादी में, दर्पण में भले झलक रहे लेकिन वो दर्पण अनुरूप नहीं होता, ना आग लगती ना ठंडा गर्म होता। तुम ठंडा पियो खाओ, खटमिठा चटपरा खाओ पियो, ज्ञान को कुछ नहीं होता, ना ज्ञानी का ना ज्ञान का, सदा काल निर्लिप्त निरंजन रहता है। अरे ज्ञान पर्याय रहती है, भद्रकाली दुर्धाम की बात कितनी कहनी। ये अपना ज्ञान निर्णय कर सकता है, कर क्या सकता है, करना चाहे एक मिनट का काम है, ऐसा ही हूं मैं, हकार बोले तो हालत बदल जाया चाहिए। तो क्या होगा, तीन की जगह दो रह जाएगा, शैलेश भाई मिथ्यात गया, मिथ्यात कुछ नहीं था, एक भ्रम का भूत खड़ा था, मैं काला गोरा सुखी दुखी रंग रहा हूं, मैं मेरे धन ग्रह गोधन प्रवाह जितना भी लिखा ना छाला में, ये सब मैं का वाच, तो दो मैं खड़े करो, एक असली मैं और बाकी सब नकली मैं। ये नकली मैं को मैं क्यों कहा जाता है व्यवहार से, इसलिए कहा जाता है वो असली के साथ पाया जाता है, लेकिन असली हो नहीं सकता वो। गुरुदेव दृष्टांत देते थे, कोई बारात जाती हो, घोड़े पे दूल्हा बैठा, उसका उसका छोटा भाई बैठा दिया, तो उसको भी बच्चे उसके साथी क्या बोलते, ए दूल्हा ए दूल्हा, वो हो जाएगा नहीं। ऐसे ही वर के बिना बारात, माने निश्चय स्वभाव की दृष्टि के बिना कोई भी धर्म का अंकुरण हो सकता नहीं, पहले नक्की करो किसको धर्म करना है, कौन धर्म से खाली है, जगत में कौन सा द्रव्य जो धर्ममय नहीं है। तो देखो ये गाथा पढ़ते हैं, पढ़िए, राम होमि परे सिंह, नामे परे संति नाणमय मेको, इदि जो झायदि जाने सो अपाणम हवदि झादा, नाहं भवामि परेषां, नामे परे संति ज्ञानमय मेका, इति यो ध्यायति ध्याने स आत्मा भवति ध्याता। हरि गीत, हूँ पर निकल, हूँ पर तनो नहीं पर न मारा, ज्ञान केवल एक हूँ, जे एम ध्यावे ध्यान काले ते शुद्धात्मा बने। इसकी ऐसी अद्भुत टीका अमृत चंद्राचार्य ने लिखी, पहले ही वाक्य में आप देखिए, पहले तो ठीक मैंने क्या कह रहे, शुद्धने से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, हेडिंग ये है। 189 का था कल बताई थी, राग का कर्ता आत्मा, राग आत्मा का कर्म बतलाया था ना, एक द्रव का अनुरूप शुद्ध द्रव का अनुरूप निश्चय ने तक कहा था, इसी में 189 में, क्योंकि एक द्रव्याश्रित कथन किया, वहाँ आचार्य को ये कहना है तेरी भूल तूने की, तू मिटा सकता है, कर्म के उदय ने नहीं कराई, पर ने नहीं कराई, इसलिए स्वतंत्र करता है परिभाषा है, स्वतंत्रपणे जो करे, राग तूने स्वतंत्रपणे किया है, तेरी स्वतंत्रता है, ना करे तो ना करे, माने ना जुड़े। कोई कहे साहब उदय में तो होता है, वो तो पकड़ रखा उदय में होता है, उसकी बात मैं इसमें से बताऊंगा। 45 गाथा की टीका में जैसा आचार्य ने स्पष्ट लिखा है, कह रहे कर्म का उदय सदा रहेगा तो जीव कभी छूट ही नहीं सकेगा, द्रव मोह का उदय रहने पर भी यदि जीव शुद्धात्मा के बल से भाव मोह रूप न प्रण में तो बंद नहीं होता, यहाँ तक लिखा है मूल टीका में जैसा आचार्य देव। तो यहाँ कह रहे हैं अब अशुद्ध ने से तुम द्रव कर्म का करता, वो सब पर्यार्थिक चक्षु की बात थी, अब इस शुद्ध ने मैं आके खड़ा किया, तो यहाँ कहते उससे आत्मा की प्राप्ति होती है, ध्यान काल में ध्यान आत्मा की शुद्धात्मा होता है, यहाँ तक लिखा। जैसे कि ये 190 और 191 गाथा इज इक्वल टू 186 गाथा समय सर, जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्ध आत्म ही, और अनुशुद्ध जाने आत्म को अनुशुद्ध, तो कब है शुद्ध आत्मा, तो मित्र पक्ष कहता है वो तो सिद्ध होने पर होता है, मैंने मित्र पक्ष है अपने अंदर भी बैठी हूँ, कमी तो निकल लू, हम आप जो मूल तत्व है उसमें अशुद्धता का प्रवेश नहीं। कोई भी वस्तु की मूल सत्ता में यदि अशुद्धता का प्रवेश हो जाएगा, तद्रूप तन्मय हो जाए ज्ञान आदि गुण की तरह आत्मा में, तो आत्मा का खात्मा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सिर्फ अज्ञान ने उसको पकड़ रखा है, मान रखा है, जान रखा है अपना, वो है नहीं अपना। अब देखो इसकी बात के, मैं पर का नहीं हूं, मैं पर का नहीं हूं, और पर मेरे नहीं है, आई एन माई, बस इतना ही है लफड़ा जगत का, मैं और मेरा। मैं के बाहर मेरा नहीं हो सकता और मेरे के बाहर मैं नहीं हो सकता, ये बात पकड़ में आ जाए। मैं एक ज्ञान मात्र हूं, इस प्रकार जो ध्यान करता है वो ध्याता ध्यान काल में आत्मा होता है। ये प्रारंभिक स्टेज में आप कह सकते हो, ज्ञानी की देशना सुनी और उसको निर्णय हुआ, 1-3-2 हो गया, अवरत सम्यक दृष्टि हो गया, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, आनंद के साथ उल्लसित हो गया सुनते ही, और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अनुभव रसपान कर लिया। इसके लिए मैं एक वाक्य बोला करता हूं, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, कहाँ खड़ा हूं, कहाँ पड़ा हूं, कहाँ अड़ा हूं, जिससे आगे नहीं बढ़ा हूं। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये द्रव्यान योग भेद ज्ञान की आंख, असली स्वरूप। कहाँ खड़ा हूं, कहाँ पड़ा हूं, यह करणान योग सब स्थिति बता देगा। कहाँ अड़ा हूं, जिससे आगे नहीं बढ़ा हूं, इसमें क्या आएगा आपका स्वरूपाचरण, स्वरूप की ओर झांका नहीं, वो बाहर की बात नहीं है, उसमें भी चरणान योग आ गया, प्रथमान योग सब आ गया, प्रेरणा आदि सब आ गया। टोडमल जी यही कहते हैं श्रोता के लक्षण में, भली होना जिन जीवों को ऐसा विचार भी आता है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, तिनका जवाब आंसर अपने हाथ में आया कि नहीं आया था? कितने विद्वान सुनेंगे, गुरुदेव से बड़ा तो अपन कोई है ही नहीं जितना वो सुनाते। ये तो अब अपने को रोना धोना बंद करना पड़ेगा, अवश्य ऐसा ही मैं हूं, अंदर से कन्फर्म रिजल्ट आना चाहिए, नो डाउट, प्रमाण से और अनुमान से, तो ही उस जीव को निसंकता आएगी। तो अनुभव लेने से पहले उसका ज्ञानात्मक निसंकता हो जाना जरूरी है, ये आप्त परीक्षा आदि में लिखा हुआ है। और इसलिए 5 प्रकार के जो बंध के कारण बताए, वो विद्यानंद स्वामी कहते हैं वस्तु तो अज्ञान मूल है। अज्ञान जब तक ये नहीं जानेगा मिथ्यात क्या है, छोड़ेगा क्या, सारा काम ज्ञान को करना है। जैन न्याय यही सिद्ध कर रहा है, तुम्हारा मति श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान लाता, पर लाता कैसे, जब तक ज्ञान ज्ञायक स्वामी इंजीनियर जो आत्मा को नहीं पहचानता, और जो आपने कहा रागादि दोस्ती रखता है, राग दुख कर नहीं लगता, इसका मतलब है आत्मा प्रिय नहीं लग सकता उसको। एक छोटा बालक सो करके उठा, माँ नहीं दिखती, रोता है, और वो चलता है 1.5 साल का समझो, और वहां सिगड़ी जल रही है, लाल अंगारे दहक रहे हैं, और उसको खिलौना समझ कर उसको टच करता है, क्या होगा उसको अनुभव, अनुभव होगा कि नहीं, अरे अनुभव होगा कि नहीं, क्या अनुभव होगा उसको, जल जाएगा, रोएगा, घबरा जाएगा, दुखमय। और माँ सुनकर के आवाज आए, उसको ठीक कर ले एक आध सप्ताह बाद, अब वो लड़का वहां से चले सिगड़ी के पास से, अब कैसा चलेगा, माँ के साथ भी वो तो ऐसा ऐसा बच के चलेगा, ये दुख का तत्व नाम नाम नहीं जानता, त्रियंज भी नहीं जानते, सम्यक दृष्टि हो जाते। अपन पढ़ते ना शिवभूति मुनि का, एक बापू जी राम जी भाई मेरे सामने की बात है, चर्चा में पूछते थे गुरुदेव से, सब याद आती बचपन की, गुरुदेव ये तो बहुत कठिन मार्ग है आपका, इतना ज्ञान, इतना इतना ऐसा, हमको तो ऐसा बताओ जैसे ये डेट का है ना, भगवान के शोषण में जा रहा था और उसको श्रद्धान हो गया, और शिवभूति मुनि जितना ज्ञान इससे काम चले, और भरत चक्रवर्ती जैसे चारित, हमें तो ये मोक्ष मार्ग प्रिय लगता है, ये क्या लंबा लंबा इतना पालो, ये करो ये करो, क्या कहा गुरुदेव ने, है तो इतना ही, इसे ज्यादा है कहाँ, पूरे जनागम में तीन सूत्र हैं जो वस्तु की संरचना, ये सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक ग्रंथ है इस विश्व में प्रवचन सार। इंग्लिश में एक अंग्रेज ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, मैंने मंगवाया अमेरिका से जैन पब्लिशिंग करके 1934 का, जब इंडिया में यहाँ इंदौर में आपके गंगवाल जी हाईकोर्ट था वहाँ अंग्रेजों के समय, वहाँ जगमंदर लाल जैनी थे बहुत बड़े बैरिस्टर, और उनके साथ था वो, उसने संस्कृत वगैरह सब सीख के वो किया, लेकिन उसमें वो दमखम नहीं आ सका क्योंकि उतनी पुरानी इंग्लिश का भी बदलता होता रहता है, देखा मैंने बहुत अंतर है। दुनिया में कहा था ना आपने, वर्ल्ड में सब जगह क्यों पढ़ाया जाता है, ये प्रमाण प्रमेय का ग्रंथ है। मेरे में प्रमेय तो शक्ति है तो मैं किसके ज्ञान का विषय बनूं, मेरे में प्रमेय शक्ति में किसके ज्ञान का विषय बनूं। प्रमेय शक्ति किसे कहते हैं, जिस शक्ति के कारण, तो कौन मैं आपके ज्ञान का, मैं मेरे ज्ञान का प्रमेय नहीं बन रहा। अरे ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। फिर क्या गड़बड़ हो गई, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी वसंत। मैं मिथ्यात के पांच बिंदु बोला करता हूं, इतनी व्याख्याएं तो जितनी चाहे आप कितनी बारीकी से को त्रिकाली की बताओ, साधन की बताओ, लेकिन एक बात समझ लो, अपने पास साध यानी जो कहना चाहिए ध्येय भी मौजूद है और ध्यान करने वाली ज्ञान पर्याय भी मौजूद है, पूरी टॉर्च, लेकिन वो परोन्मुख है, परलक्षी, इसलिए काम नहीं हो रहा। शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान नहीं, आत्मज्ञानी ज्ञान है से सभी, तो आत्मज्ञान नहीं होगा। अरे ज्ञान तो आत्मा का ही और आत्मा से हो रहा है, निर्णय करना है इस ज्ञान को। हम सब शिखर जी यात्रा पे जा रहे हूं, हमेशा सुनाता हूं ये बात, और बड़ी टॉर्च मेरे पास हो, हम जरा आगे निकल गए, आप पीछे आ रहे हो, सवेरे चलते ना रात में 3 बजे करीब, अंधकार है, और संजय जी बोले भाई साहब रुको रुको, मैंने टॉर्च उल्टी कंधे पर रख ली, चले आओ भैया। हम 10 कदम चले और धड़ाम से गिर गए, मुझे किसने पटका, बोलो नितिन भाई कर्म के उदय ने, संजय जी हाँ इनने कहा था, नहीं तो नहीं मिले। किसने पटका, किसने ठोकर कही कि गड्ढा था, पत्थर था, दिखा नहीं, दिखा नहीं कि देखा नहीं, बस इतना ही है, पूरा पूरा निचोड़ कर लो आप द्वादशांग का, ज्ञान ही साधकतम साधन है। करण साधन ज्ञान को कहा, निर्णय में, लीनता में, अनुभव में, पूर्णता में, इसको ही करना है। और ये लेकिन पर में लीन रहे, राग में लीन रहे, विषयों में लीन रहे, अरे लेकिन भेद ज्ञान हो जाए एक बार, फिर आसक्ति से इधर उधर उपयोग जाए भी, लेकिन वो मूल सत्ता से आउट नहीं हो सकता। नाम हो मि परे सिम, नामे परे संति नाणमय मेक को, इदि जो झायदि जाने, अपाणम सो होवदि ज्यादा। ध्यान का मैं क्या कह रहा था, वो ध्यान का भी सूत्र है ना अपने यहाँ, क्या है तत्वार्थ सूत्र में, क्या सूत्र है, पूरा पूरा सूत्र बोलो संजीव जी। उत्तम संगनने सही काग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मूर्तात्। उत्तम संगनन वाले जीव के एकाग्र चिंतन रूप, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान होता है अंतर्मुहूर्त के लिए। एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, उसके भीतर के एक समय भी कम है तो वो सब अंतर विदिन अंतर्मुहूर्त कहलाते। इतना हो जाए तो केवल ज्ञान ले जाए, लेकिन उसमें ये बात कही कि उत्तम संगनन, संगनन 6 प्रकार के, जरा आगम की भी बात देखें, संगनन 6 प्रकार के कौन कौन से कनु भाई, वज्र वृषभ, वज्र नाराज, नाराज, ये उत्तम संगनन कहलाते। अनुत्तम कौन से गंगवाल जी, अर्ध नाराज, कीलक, असम प्राप्ता, सरपाटिक। अपने पास कौन सा संगनन है अभी, अरे
अरे वो अभी अध्यात्म बाद में आते हैं, ज्ञान संगठन है, अभी शरीर की ओर से बात चल रही।
तीनों में से कोई
अंतिम है असंप्राप्त त्रिपाठी का। हाँ तो भी कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं मोक्ष पावड़ में 76 गाथा में अजी भी तिर शुद्धा, आज भी तीन रत्नों से शुद्ध ये जीव सम्यक रत्नत्रय ले सकता है, लोकांतिक देव हो सकता है, इंद्रपद प्राप्त कर सकता है, साधु गाती। और आगे गाता है भरे दुखम काले, पहला है वो इस भरत क्षेत्र में दुखम काल में भी ध्यान होता है। अब प्रश्न बनेगा तो इसके ऊपर से अभी समय होता है, ध्याता ध्यान काल में आत्मा होता है, ये लिखा है ना इसमें, ये तो अर्थ हुआ गाथा का। अब सूत्र जो है उसमें से अपने पाप उत्तम संगनन तो है नहीं, अनुत्तम है, तो लिखा उत्तम संगनन वाले के तो शुक्ल ध्यान होता है, और जो मोक्ष जाता है उसके तो वज्र संधारा संगनन वाले ही संगनन चाहिए, लिखा है आचार्य ने संबंध बताए। अनुत्तम संगनन वाले इन तीनों को धर्म ध्यान इस काल में भी होता है, लिखा है मोक्ष पाण गाथा देखना 76। तो वो ध्यान माने क्या, किसके पर्याय, हमें तो बापू जी ने एक सबसे बड़ा मंत्र सिखाया था, कोई भी शब्द कुछ बात है तो द्रव गुण पर्याय से पकड़ो। ध्यान क्या है, द्रव्य के गुण के पर्याय के साथ पर्याय है, किसकी पर्याय है, किसकी पर्याय है बताओगे? अरे बताओ तो, अपने पास जो गुण है ना, गुण की पर्याय है कि द्रव्य की पर्याय, किसकी पर्याय है? ध्यान, ध्यान करो ध्यान करो सब बोलते हैं, ध्यान केंद्रों में जोड़े जाते हैं लोग। हाँ बोलो किसकी पर्याय? ज्ञान गुण की है, जानना ज्ञान, जानते रहना ध्यान बोलते हैं ना, एकाग्र चिंता, एक पैत्र हो जाना, एक माने अवलंबन लेना, अग्र आत्मा को लिखा है आचार्य, अंगति जानाती थी अग्र, ऐसा लिखा है। जैसे कोई कहते ना अंग, मेरे अंग मत पकड़ो, आचार्य ने कहा अंग माने आत्मा, क्योंकि अगर आत्मा निकल गया तो फिर इसका नाम क्या होता है, बॉडी। बॉडी कहाँ पड़ी, बॉडी लाओ, बॉडी किधर गई, वो तो चली गई, भस्मीभूत हो गई, कौन वो हेमचंद ज्ञानचंद नहीं रहता, और बॉडी नाम तत्काल हो जाता है, तो पहले नहीं था। अंग मत पकड़ो, अंग माने आत्मा है तभी बोलेगा ना, तो उसमें लिखा अंगति जानाती इति आत्मा सिद्ध किया। और अग्र, अग्र माने आगे जो हो, छह द्रव्यों में मैं जीव द्रव, तत्वों में मैं जीव तत्व, पदार्थों में मैं जीव पदार्थ, अस्थिकाओं में जीव अस्थिकाएं, सबसे पहले तू है और अपने को भूल रहा है। चिंता का निरोध, जो चित्त वृत्ति है जो इधर उधर लुढ़कती है, क्योंकि ट्रेंड है वो विषयों की ओर, खूब मनोविज्ञान से आप विश्लेषण कर लो, हमारे उपयोग का पापों की ओर लुढ़कने में देरी नहीं लगती, क्यों ट्रेंड है अनादि से, कंटाला नहीं लगता। और अभी तो थोड़ा सा सोपयोग आत्मा के चिंतन की ओर बाता है तो इसको कष्ट सा लगता है, थकावट लगती है, और जब आत्मा में जुड़ेगा तब कितना उसका पुरुषार्थ होगा ये बतलाएंगे। इसमें देखो 191 गाथा की पहली टीका की लाइन पहली, उतना पढ़ के फिर आगे चलेगा बाद में। जो आत्मा, क्या लिखा जरा देख लो, थक तो गए होगे, सातवां प्रवचन है आज के दिन भर का, गुरुदेव का एक, फिर सवेरे दो, फिर दोपहर में दो, अभी भी दो, लेकिन भाई साहब ये आप हम सब का रस रुचि है, जो हम उसको सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं हर एक एंगल से, हर दृष्टिकोण से। टोडरमल जी ने पहले अध्याय के अंत में लिखा है धर्म ध्यान से ऊंचा धर्म का कोई अंग नहीं है, देख लेना आप लास्ट लाइन, और इससे ऊंचा धर्म क्यों नहीं है, कि मोक्ष तो ध्यान से ही होता है, ज्ञान से नहीं होता, ज्ञान तो बहुत किया गया रंगों पूर्व, जो उपयोग में उपयोग स्थिर हो जाए तो वो योग निरोध होकर के निर्जरा कर देता है। हाँ वही बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम ले रहे हैं, इसी में से ले रहे हैं, जाने जाने वो ज्ञान हो गया ना, ज्ञान के बाद अब वो ज्ञान ज्ञप्ति परिवर्तन करता है, इसको ही अपने स्वभाव में एकाग्र करने का प्रयत्न, उसका ही नाम सभी कल्प धर्म ध्यान नाम पाता है आत्मलक्ष्य। है तो वो ज्ञान का ही पर्याय है, लेकिन उसका स्थिर हो जाना। एक इसमें परमात्मा का उसमें कहाँ पर दृष्टांत दिया है कि बाहर था दीपक, हवा चल रही थी तो लो ऐसी ऐसी हो रही थी, और उसको गर्भगृह में अंदर रख दिया, स्थिर हो गया। ख्याल में ना, तत्वानुशासन है कि ये आपको आत्मा का ज्ञान तो हो जाएगा, ध्यान कब होगा कि आपका उपयोग जब पर से छुट्टी लेकर के अपने घर की ओर लौटे तब होगा बुद्धिपूर्वक। फिर मुनिराज को तो सहज अबुद्धिपूर्वक अबुद्धि पर चलते ही रहता है, क्यों, उनको तो वो ट्रेंड हो गया उपयोग शुद्ध उपयोग सोयोग शुद्ध उपयोग सो, और ये ट्रेंड अनादि से। तो लिखा है रागी विकल बुद्धि वाले जीवों के लिए उपदेश है भीतरागियों का, किसके लिए, रागी विकल बुद्धि वाले जीव। तो विकल्प कौन, वो 95 नंबर का कलश लिया था ना, विकल्प आए विकल्प करता थे, विकल्प की विकल्प का करता है, तो उपयोग दौड़ता रहता है इधर उधर। अपन कभी जाप भी देते, कभी विचार करो इस पे, तो उपयोग कहाँ से कहाँ चला जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि राग से इतना आंदोलित है। जो आपने अभी लिया ना, इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया था, अज्ञान किसे कहें, जो राग की गुलामी करे वो अज्ञान, ज्ञान किसे कहें जिसकी गुलामी राग करे। अज्ञानी का ज्ञान राग की गुलामी करता है, इसलिए अज्ञान है, उसका कहना मानता है। और ज्ञानी का राग अभी है अवस्था में, वो ज्ञान की गुलामी करता है, ज्ञान के कंट्रोल में आता है। तो भैया उपदेश तो सब प्रकार से है, वो तो जिस समय जो होना हम उसको मुख्य करेंगे, तो हम एक पर्याय भी आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर इसका श्रद्धान हो जाए तो वो तत्काल दृष्टि स्वभाव पर आ जाए, दृष्टि स्वभाव पर आएगी फिर कौन सी पर्याय पलटना, तो वहीं आत्मज्ञानी हो जाएगा। इसलिए कहा रागी विकल्प बुद्धि वाले जीवों को मुख्य रूप से 6 द्रव 7 तत्व 9 पदार्थ, जितना भी वो सौधर्म इंद्र ने इंद्रभूति गौतम से श्लोक पढ़ के पूछा था, त्रैकाल्यम द्रव षटकम 9 पद सहितम जीव षटकालिस्या पंचान्य चास्तिकाय व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम प्रोक्त मरद विरिशयी प्रत्येति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान या सा शुद्ध दृष्टि। वो शुद्ध दृष्टि है जो इस सबको जान लेता है व्यवहार निश्चय। तो ये पहली लाइन इसमें है, जो आत्मा मात्र अपने विषय में प्रवर्तमान अशुद्ध द्रव निरूपणात्मक अशुद्ध द्रव के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय में अविरोध रूप से मध्यस्थ रहकर, अभी इतना ही अर्थ करना है बस, विचारना इस लाइन पे, कल इसका लेंगे। क्या कहा, व्यवहार नय की परिभाषा एक शब्द में दे दिया आचार्य ने, अशुद्ध द्रव निरूपणात्मक। किसी को किसी में मिलाकर कथन करे, टोडमल जी सामने लिखा है ना, भेद करना, अभेद को भेद बताए, भेद को अभेद बताए, शरीर आत्मा भिन्न है लेकिन एक कहेगा, ज्ञान दर्शन चार आदि अभेद है तो भी गुण भेद करेगा, और उसके बिना उसको परमार्थ पकड़ में नहीं आता। इसलिए वास्तव में व्यवहार सम्यक ज्ञान कंश क्यों कहा गया, जो व्यवहार परमार्थ के लिए हो, जो व्यवहार परमार्थ को लिए हो, वो व्यवहार सम्यक व्यवहार। परमार्थ के लिए पेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार संबंध, ये वास्तविक बात। अभी समय हो गया है, विराम देता हूँ। जो अशुद्ध रूपणात्मक व्यवहार नए और शुद्ध रूपणात्मक निश्चय नहीं, बात कल है, और उसके बाद ध्यान का भी स्वरूप की बात चलेगी। Yeah.